सत्संग में श्री धाम पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में प्रणाम। आप सबका धन्यवाद, भगवत नाम के जप में भाग लिया, कथा में प्रवेश करते हैं। आइए अष्टम स्कंद, आठवां स्कंद कल हम चर्चा कर रहे थे, बारह स्कंद भागवत में है, आठवें स्कंद के अंतिम चरण में हम हैं। आठवें स्कंद को के अंदर हमने आपसे कल चर्चा की थी कि जब भगवान सृष्टि करता है, जब संसार की सृष्टि होती है, सर्जन करता है, तो उसका संचालन भी भगवान को करना है, गवर्नमेंट भी बनानी है, कभी देश होगा तो उसकी सरकार भी होनी चाहिए। तो भगवान के इस सृष्टि के ब्रह्मांड की संचालन के लिए भगवान ने मनवंतर का क्रम रखा है। एक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है और वो एक मनु चुनता है जो सारी व्यवस्था को देखता है, एक इंद्र चुनता है जो सारे प्राणियों के आवश्यकताओं के अनुसार उनको सब चीजें प्रदान करता है, सप्त ऋषि, सात ऋषि चुने जाते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए उनको धर्म की शिक्षा देते हैं, और अन्य देवताओं का, जैसे यहाँ अपने विधानसभा में चुनाव होता है, ऐसे पाँच साल के बाद हमारी गवर्नमेंट बनती है, ऐसे इसे भगवान की सरकार की गवर्नमेंट ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार बनती है, लेकिन वो मनु का, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, और एक मनु के समय में, एक मनु की जो शासन काल है वो 71 चतुर्युगी का होता है, 71 टाइम्स 4 साइकल्स द्वापर। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इस के अंतर्गत हमारा जीवन कितना छोटा है। एक मनु का जीवन, उसके सामने हवा, हमारा जीवन एक घड़ी में टिक टिक होती है, इतना भी नहीं। तो मनवंतर में उद्देश्य क्या होता है? शासन को सुचारू चलाने के लिए लोगों को धर्म के रास्ते के ऊपर चलाना। गवर्नमेंट का काम यह है ना कि सही रास्ते पे सबको चलाए, नियम के अंदर चलाए। तो भगवान ने मनवंतर में सुशासन चलाने के लिए सद्धर्म की स्थापना की जाती है। सद्धर्म की स्थापना, सद्धर्म का मतलब है वो धर्म जो स्वयं पालन करे और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करे। तो इस सद्धर्म मनवंतर को सद्धर्म कहते हैं, और इससे हमारे अंदर जो कर्म की वासनाएं हैं उनके बीज का क्षय हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम कोई काम करते हैं, उसका एक बीज रूप हो जाता है, फिर टाइम आने के ऊपर वो फल देता है, और उसका फल सुख और दुख होता है। संसार में जो भी हम काम करते हैं उसका फल सुख या दुख है, लेकिन जब हम सद्धर्म का पालन करेंगे तो कर्म तो करेंगे लेकिन उसका फल ही नाश हो जाएगा, फल क्षय हो जाएगा। तो सद्धर्म पालन की शिक्षा मनवंतर में दी जाती है। तो इस मनवंतर में हमने पहले रक्षा देखी, स्वयंभू मनु की रक्षा की यज्ञ भगवान ने, ये मनवंतर की रक्षा। फिर इस मनवंतर के अंदर आपत्ति विपत्ति में भगवत आराधना से भगवान विष्णु ने, उस वक्त हरि का अवतार था उस मनवंतर में, आके गजेंद्र को मुक्त किया गिरह के फंद से, और फिर उसके बाद के मनवंतर में भगवान अजीत का अवतार हुआ, और उस समय समुद्र मंथन की लीला हुई। ये भगवान अजीत के अवतार के समय में ये मनवंतर, और अजीत भगवान के समय में समुद्र मंथन की लीला में सारा काम भगवान ने किया, प्रेरणा भगवान ने दी, मंदराचल पर्वत उठा के आने में सहयोग भगवान ने किया, कच्छप रूप धारण के धारण करके उसका आधार स्वयं बने, ऊपर से पकड़ने के लिए 10,000 भुजाओं वाले भगवान ने रूप धारण किया, प्रवेश करके सब में मंथन में सहयोग किया, और फिर धनवंतरी बन के अमृत कलश भी लाए और मोहिनी मूर्ति बन के वितरण भी किया। तो भगवान ने सब प्रकार से सर्व चीज का दान किया, और विष को भगवान शंकर ने पान किया, कामधेनु ऋषि ले गए, घोड़ा निकला उच्चस्वर बलि महाराज को मिल गया, ऐरावत हाथी गया इंद्र के पास, फिर उसके अंदर से लक्ष्मी निकली जिसने वर्ण किया भगवान विष्णु का, और भी रत्न निकले, अप्सराएं निकली स्वर्ग में चली गई, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में चला गया, वरुणी निकली, अब तो दैत्य कहने लगे अरे सब चीजें दैत्य देवता ले जाओगे, ओ वरुणी आप ले लो, वरुण आप पियो, ये शराब आपके काम का है, दैत्यों को वरुणी दे दी। तो इस प्रकार से 14 रत्न, उसमें से मुख्य 3 रत्न है कामधेनु धर्म के संपन्न के लिए, यज्ञ के लिए, लक्ष्मी सबका अर्थ पूरा करने के लिए, और अमृत, 3 मुख्य रत्न है। अन्य रत्न बहुत निकले थे समुद्र मंथन से, और चंद्रमा भी निकला था। अब बांटने के समय मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को अमृत पिला दिया, और केवल राहु के गले तक अमृत पहुंचा और असुरों को अमृत नहीं मिला। युद्ध हुआ फिर भी अमृत ने अपना काम नहीं दिखाया, भगवान विष्णु का आराधना की गई, भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके जब आए अष्ट भुजाओं से, तब अमृत ने अपना काम दिखाया, और उसके बाद देवताओं को अमृत मिल गया। अब देवता शक्तिशाली हो गए, अभी दैत्य जो थे उनको ऐसा मारा भगा दिया, वो भाग के गए, अब घूम घूम के चुन चुन के दैत्यों को मार रहा था इंद्र, और उसके साथ ही नारद जी आए। नारद जी ने कहा देखो अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई, ऐसे द्वेष मत करो, अब आप जाके अपना राज करो, भगवान ने आपकी इतनी सहायता की है, तो अब आप दूसरों के ऊपर क्रूरता मत करो। नारद जी के कहने के ऊपर ये अपनी तरफ चले गए। यहां प्रसंग आता है कि यह समाचार जब भगवान शंकर के पास पहुंचा, तो भगवान शंकर ने के मन में विचार आया, मैंने भगवान के सब अवतारों को तो देखा है, लेकिन कभी मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया इसका तो मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं है। अब प्रसंग यह उठता है कि भगवान नंदी के ऊपर सवार हुए, पार्वती जी को साथ लिया, और भगवान के पास वैकुंठ में पहुंचे, प्रणाम करके कहते हैं बड़े दयालु हैं, बड़ा आपने क्षीर सागर मंथन से अमृत देवताओं को पिलाया, लेकिन मैंने सबका आपके अवतार देखे हैं, लेकिन ये मोहिनी अवतार आपने कैसा धारण किया था, मेरी इच्छा इसको देखने की। अब ये प्रसंग ऐसे आया क्यों है, इसको समझना चाहिए कि भगवान के इस प्रसंग का उद्देश्य क्या है। मानो देवताओं ने आके भगवान को कह दिया कि आपने हमको तो अब अमृत पिला दिया, अब दैत आपके पास तो आएंगे नहीं, अगर शंकर जी के पास गए तो वो आशुतोष है, वो तो कहेगा मैं आपकी सहायता करूंगा, ओ बाबा अगर त्रिदंड लेके खड़ा हो गया इंद्र ने कहा हमारे सामने, तो हम कैसे उससे युद्ध करेंगे। दैत भी अगर शंकर जी के पास चले जाएंगे तो शंकर जी उनकी सहायता करेगा, वो तो ना करेगा नहीं, और फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो भगवान विष्णु का ठीक है आप शांत रखो, भगवान विष्णु से मैं बात कर, भगवान शंकर से मैं बात करता हूं, उसको मैं बुलाता हूं। और भगवान शंकर से मानो भगवान विष्णु ने बात की, उनकी अपनी बात करने की भाषा है और उनके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो शंकर जी ने कहा एक रास्ता है, अगर आप मुझे ऐसी कोई लीला करके हरा देंगे तो दैत्य मेरे पास आएंगे नहीं, देखेंगे हरा हुआ है तो इसके पास जाके क्या करेंगे, तो देवताओं का काम सिद्ध हो जाएगा। और फिर दूसरा ये दिखाना था भगवान शंकर की इस लीला में कि स्त्री का रूप इतना लुभाना होता है कि साधु संत महात्मा को सर्वदा सावधान रहना चाहिए, ये विशेष रूप से संतों को साधुओं को यतियों को दिखाना था, और ये भी दिखाना था कि अगर विष पिलाया गया है प्रेम से बुला के शंकर को, तो उस विष का निवारण भी करना चाहिए, उस विष को निकालने का भी कोई साधन जुटाना चाहिए। और फिर भगवान शंकर के शक्ति के द्वारा हनुमान को भी भविष्य में प्रकट होना था, बहुत सारे काम संपन्न करने थे इस लीला में। तो इस लीला को साधारण लीला नहीं समझनी चाहिए। अब शंकर जी पधारे और भगवान को प्रार्थना की कि, और शंकर जी के मन में यह भी भाव आया कि देवताओं के ऊपर तो प्रभाव पड़ा नहीं, मोहिनी मूर्ति का प्रभाव तो केवल असुरों के ऊपर पड़ा था, तो फिर मैं जाके उस देख लूंगा। भगवान ने कहा अच्छा शंकर जी ये देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आप इच्छा करते हैं, आप हमारे भक्त हैं, मैं तो भगवान भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए ही बैठा हूं, मेरा काम ही ये है। भगवान का ये बहुत बड़ा, भगवान ने एक जगह कहा है कि भक्त वांछा पूरी करे, भक्तों की वांछा पूरी करे, यही कृत्य है मेरा काम। मेरा काम यही है कि भक्तों की इच्छा पूरी करने, और कोई मेरे को काम नहीं, बाकी काम तो सब संचालन देवता लोग करते हैं। अब थोड़ी देर में एक सुंदर बगीचा बन गया, बगीचे में सरोवर बन गया, सरोवर के किनारे पे एक सुंदर सी सुकन्या खड़ी हो गई और हाथ में ले लिया गेंद, और वस्त्र बहुत सूक्ष्म पहने हुए थे, वो भी आर पार दिख सके आंखें, और कमर में करधुनी बंधी हुई थी और खेल रही थी बालक। अचानक शंकर जी का दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और बाबा उसको देखने लगे, और वो पार्वती को देखने लगी, और बाल उसके हाथ से आगे चला गया, और शंकर जी बाल की तरफ दौड़े, मोहिनी मूर्ति बाल की तरफ दौड़ी और हवा का झोंका आया, वो करधुनी और कपड़ा भी थोड़ा अलग हो गया, और बाबा अभी आगे, मोहिनी मूर्ति पीछे, शंकर जी जा रहे हैं, पार्वती भी साथ है, और ऋषि बहुत सारे बैठे हैं। अब ऋषियों के आश्रमों के बीच से शंकर जी उसके पीछे जा रहे हैं, और मोहिनी मूर्ति आपे आगे जा रही है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और एक जगह उनको पकड़ने के लिए जैसे हाथ लगाते हैं तो वो जैसे सांप हाथ से निकल जाता है, ऐसे निकल के चली गई। इस बीच में देखते देखते शंकर जी के शरीर से शक्ति का ह्रास हुआ, वीर्य खिलत हुआ, और उसके बाद शंकर जी के चेहरे के ऊपर न कोई शंका थी, न कोई शोक था, न कोई भय था, और भगवान उसी वक्त मोहिनी मूर्ति रूप को लुप्त कर दिया और साधारण रूप में खड़े हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बहुत सुंदर आपका रूप था ये, और इस रूप के द्वारा आपने हमारे को इतना प्रभावित किया कि हम भी इस आपकी माया से मोहित हो गए। भगवान ने कहा कि शंकर जी आप तो आत्माराम हैं, आप आत्माराम हैं, आप मोहित हुए ये बात नहीं है, लेकिन आपको ये शिक्षा देनी थी इन ऋषियों के आश्रम में जाकर कि शंकर जैसा महान योगी भी अगर भगवान की माया से मोहित हो सकता है तो कभी भी किसी को असावधान नहीं रहना चाहिए ऐसी स्थिति में, ये शिक्षा आपके द्वारा देनी थी। और भगवान शंकर पार्वती के साथ फिर कैलाश के लिए विदा हुए, और यहाँ ये लीला संपन्न होती है इस प्रकार से। तो इस लीला में देखना ये है कि, और फिर हमने एक बात जैसे आपको कही, सप्त ऋषियों ने वो भगवान शंकर की शक्ति को संचित करके रखा, और वायुदेव ने उस शक्ति को अपने द्वारा उठाकर माँ अंजनी के उदर में स्थापित किया, इसलिए हनुमान को रुद्र कहते हैं, भगवान शंकर का एक अवतार कहते हैं, इसलिए 11 रुद्रों में इस हनुमान एक भगवान शंकर के इस वीर्य के द्वारा हनुमान वायुदेव के द्वारा ले जाया गया, इसलिए रुद्र भी कहते हैं, वायुपुत्र भी कहते हैं। और अंजनी माँ की शादी हुई थी उस वक्त केसरी नाम के जो 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 सरदार था उस वक्त वन राजों का, तो केसरी पुत्र भी हनुमान का नाम है। तो एक हनुमान के उत्पत्ति का ये रहस्य है। अब हम आगे चलते हैं एक लीला इसके बाद वाली में, असल में जो 14 मनु 6 हो गए, सातवां चल रहा है इस वक्त, जो मनु चल रहा है हम सातवें मनु के शासन में चल रहे हैं। इस मनु के साथ, इस मनु का नाम है विवस्वान, विवस्वत, विवस्वान का बेटा, विवस्वत भी इसका नाम है और शरदवान भी इसका नाम है। ये मनु है इस वक्त भगवान का अवतार, ये वामन देव होगा जिसका अभी चरित्र हम पढ़ने जा रहे हैं। और पुरेंद्र इंद्र है इस मनवंतर में, पुरेंद्र नाम का इंद्र है जो शासन चला रहा है। इससे आपको यह समझना चाहिए इंद्र भी पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है। कोई भी इंद्र समय आने के ऊपर होगा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र के पद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इंद्र भी पोस्ट का नाम है, मनु भी पोस्ट का नाम है, मनु मतलब प्रेसिडेंट समझ लो। तो इस वक्त व्यवस्थित मनु है, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा संकेत में जो मनु इसके बाद आएगा उसका नाम भी बताया है, शारवण मनु आएगा, उसलिए किसी के लिए बताया है। सूर्य भगवान का नाम है विवस्वान। सूर्य का नाम क्या है? उसकी दो पत्नी तो सबको पता है नाम है, एक का नाम है संज्ञा, एक का नाम है छाया, एक तीसरी भी पत्नी है। संज्ञा और छाया, संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो इसके बाद मनु पर बनेगा, शारवणी मनु उसका नाम है, और शनिश्चर महाराज उसका पुत्र है, ये शनि देव उसका पुत्र है। और दूसरी छाया से यम यमराज और यमी जमुना सूर्य पुत्री है, ये जमुना सूर्य पुत्री है, ये शनिश्चर की बहन है और यमराज की बहन है। इसलिए बहुत से लोग यमद्वितीया को, यमद्वितीया एक तिथि आती है और मथुरा में जमुना में स्नान करते हैं और वहीं यमराज का मंदिर है, स्नान करके यमराज के मंदिर का दर्शन करते हैं। मान्यता ये है कि जिसने ये दर्शन किया उसको कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब यमलोक नहीं जाएगा। इसलिए उस दिन लाखों की संख्या में लोग भारत से, विशेष रूप से गुजरात से, यमद्वितीया के दिन मथुरा में आते हैं। तो ये यमी और यम, और तीसरी पत्नी से दो अश्वनी कुमार जो जो वैद्य हैं, जो देवताओं के डॉक्टर है ना, दो अश्वनी कुमार, वो भी सूर्य पुत्र हैं। तो ये बात इसकी करके फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आने वाले मंत्र मनवंतर में जब शारवणी मनु सूर्य का पुत्र मनु बनेगा उस वक्त इंद्र बलि को बनाया जाएगा। बलि महाराज इंद्र बनेगा, बलि महाराज आने वाले मनवंतर का इंद्र है। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया बलि महाराज को, बलि महाराज को बांध दिया था वामन देव ने, जो उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गया था। अब सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज कहते हैं महाराज भगवान भीख मांगने गए थे और बलि जैसे राजा जो दानी है उसको बांध दिया था, जरा इसका विस्तार से हमें बताइए। ये प्रश्न पूछा गया। अब भगवान किसी के घर भिक्षा मांगने जाएगा क्या, जिसके पास लक्ष्मी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है? और बलि महाराज जैसा दानी उसको वो क्या कुछ दे नहीं पाया, उसको बांध दिया। अरे सुना गया है कि दुनिया में दो ही दानी हुए हैं, एक बलि और एक कर्ण, इसके अलावा दानी जिसको जिसको भगवान दानी मानते हैं, दुनिया वाले किसी को भी दानी माने लेकिन भगवान इन दो को केवल दानी मानते हैं अभी तक, एक बलि को और एक कर्ण को, जिनकी प्रतिष्ठा भगवान ने अपने हाथों से की है। बलि की प्रतिष्ठा वामन देव स्वयं जाके कर रहा है और कर्ण की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिखाया था कि कर्ण कितना दानी। अब कथा बताते हुए कहते हैं बलि तो मर ही चुका था, अमृत पीने के बाद देवताओं ने जब दैत्यों को मारा तो बलि मर ही चुका था, लेकिन बलि के शरीर को उठाकर दैत्य ले गए भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास, और भृगुवंशी ब्राह्मणों के अंदर संजीवनी विद्या थी, उन्होंने बलि को जीवित कर दिया। और बलि जीवित हो गया तो बलि प्रसन्न हो गया उन ब्राह्मणों के ऊपर, अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दे दिया। ब्राह्मणों ने उनका एक विश्वजीत यज्ञ कराया। अब ब्राह्मणों ने विश्वजीत यज्ञ का आह्वान किया, विश्वजीत यज्ञ में बलि बैठे और यज्ञ की पूर्ण आहुति में यज्ञ के अंदर से एक दिव्य रथ निकला। दिव्य रथ जैसे बाहर निकला, सिंह स्वर्ण 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 सोने जैसा रंग का रथ निकला, ऊपर ध्वजा निकली जिसके ऊपर सिंह का चिन्ह था, अंदर से धनुष भी निकला और दो तरकस निकले जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते हैं, अक्षतर्कस तरकस निकले। और फिर प्रहलाद महाराज ने अपने पोते को कभी नहीं सूखने और मुरझाने वाली कमल की माला पहनाई, और शुक्राचार्य गुरु ने शंख दिया बजाने के लिए। और दिव्य कवच निकला। अब सुसर्जित होके इन सब आयुधों से युद्ध के लिए बलि तैयार हुआ, रथ के ऊपर आरूढ़ हुआ, बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर इंद्रपुरी के ऊपर धावा बोला, आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। लेकिन वहां इतना सुंदर इंद्रपुरी का वर्णन लिखा है, जहां से वो गुजर रहा है कितना स्वर्ग अच्छा है, मन लुभाने वाला है वो दिख रहा है। लेकिन इंद्रपुरी के बाहर से शंख बजाया बलि ने, और शंख की ध्वनि से देवताओं ने ऐसी टेढ़ी आंख से देखा, अरे ये समुद्र सेना कहां आ रहा है। भागते हुए गए अपने गुरु बृहस्पति के पास, महाराज ये बलि हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, क्या करना चाहिए। और बृहस्पति कहते हैं इस वक्त ब्राह्मणों का पूर्ण आशीर्वाद बलि के साथ है, और विश्वजीत यज्ञ से दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, आप बलि से इस वक्त लड़ नहीं सकते, इस वक्त आप अदृश्य रूप से स्वर्ग से निकल के चले जाओ। देवता अदृश्य रूप से स्वर्ग से निकल के चले गए। बलि महाराज को स्वर्ग खाली मिला, स्वर्ग के ऊपर विराजमान हो गए। बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर विराजमान हो गए, और भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कहा महाराज अभी आप अवेद्य बैठे हो स्वर्ग के सिंहासन पे, अगर हमारे आप शिष्य तो हम चाहते हैं कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, फिर तो आप इंद्र बन ही जाओगे ना, फिर कोई नहीं आ सकता। ये अपनी योजना बना के और कहां चले गए, नर्मदा के तट के ऊपर। और भृगु कच्छ उस जगह का नाम है जिसको आजकल बरूच बोलते हैं, जो बड़ौदा और सूरत के बीच में बरूच स्टेशन आती है, जहां नर्मदा समुद्र में मिलती है, इसका पुराना नाम था भृगु कच्छ। भृगुवंशी ब्राह्मण यहां रहते थे। इस भृगु कच्छ में आवाहन ये यज्ञ की, इसको बरूच में यज्ञ का काम चल रहा था। दूसरी तरफ आदित्य देवताओं की माता अपने पुत्रों को बहुत समय से नहीं देखा, इसलिए चिंतित हो गई और अपने घर में रही। और कश्यप जी के लिए यह कहा है कि वो भ्रमण करते रहते साधुओं की तरह, कभी कहीं तपस्या करने जाते थे, कभी ऋषियों से मिलने जाते थे, कभी सत्संग करने जाते थे, घर पे नहीं थे। जैसे कश्यप जी बाहर से वापस घर में प्रवेश हुआ, तो अपनी पत्नी आदित्य के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी निराशाई देखी, थोड़ा सा संकट देखा, और संकट को देख के पूछा प्रिय आप यज्ञ नहीं कर पाई हैं क्या, घर में किसी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाई हैं क्या, क्या संध्या वंदन और दीप करने में कोई आपको कठिनाई पड़ी है, आप इतनी मुश्किल में क्यों नजर आ रही हैं। और फिर पूछते हैं कश्यप जी क्या आपके पुत्र तो ठीक है ना। आदित्य कहती है मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी भार्या हूं, धर्म के काम में कहीं मैंने कोई त्रुटि नहीं करने दी है, यज्ञ याग ठीक किया है, अतिथि का सत्कार किया है, लेकिन आपने पुत्रों का पूछा है तो पतिदेव पुत्र मेरे को देखे को बहुत दिन हो गए, वो तो पता नहीं कहां चले गए हैं, इंद्र की जगह पे अब बलि महाराज बैठा हुआ है, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे पुत्र वापस अपने स्थान पे आए, मुझे कोई रास्ता बताओ। कश्यप कहते हैं प्रिय ब्रह्मा जी ने मेरे को जब सृष्टि करने का आदेश दिया तो एक व्रत मेरे को बताया था, और वो 13 दिन में पूरा होता है, और उस 13 दिन वाले व्रत में आपको, उस व्रत का नाम है पयो व्रत, उसमें केवल दूध पीना है, और उसकी सारी मैं विधि आपको बताता हूं। और द्वादशी तक वो व्रत करना, और फिर इस व्रत की पूर्ण आहुति के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, और इस प्रकार से आप स्वच्छ रह के इस व्रत को करोगी तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसे कश्यप जी ने आदित्य को 13 दिन के व्रत के द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। कहां से सुन के आए थे? ब्रह्मा जी से। बोला मेरे दादाजी ब्रह्मा जी ने मुझे ये सिखाया है। तो ये परंपरागत है, कोई अपने नए नमूने की बात नहीं शुरू करना जा रहे हैं। अब आदित्य ने बड़े, जिसको कहा जाए बड़े होशियारी के साथ, सावधानी के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की, और ध्यान करके, जप करके, पूजा करके, अर्चन करके, 16 उपचार से भगवान की पूजा करके, और आखिरी दिन जिस दिन बचा भगवान आदित्य के सामने प्रकट हुए। अब आदिति कुछ बोल नहीं पा रही है, भगवान को देख ले बड़ी प्रसन्न हो रही है, गला गदगद हो रहा है, बोल नहीं पा रही है। थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़ के कहा कि आप दयालु हैं भगवान, आपके दर्शन के बाद अब मैं तुच्छ चीज आपको से मांगूं कि मेरे पुत्रों की रक्षा करो, मुझे लज्जा आती है। और भगवान ने माता को देख बोला मुझे मालूम है माँ, मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो। अब इस वक्त ब्राह्मणों की सुरक्षा में बलि सदमार्ग के ऊपर चल रहा है, उसको वहां से कुरूति से हटाया, कुरीति से हटाया नहीं जा सकता, ये मैं नहीं कर सकता हूं। भगवान कह रहे हैं कि कोई दुनिया में सही रास्ते पे चलेगा तो मैं उसको वहां से नहीं हटाऊंगा। कितना बड़ा सिद्धांत, ठीक। फिर भगवान कहते लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी सद्भावन से, भावना से प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए आपकी सहायता करने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। आप अब कश्यप के अंदर मेरा स्वरूप का ध्यान कीजिए, लेकिन यह बात गोपनीय रखना, छुपा के रखना, किसी को बताना मत। और मैं आपका पुत्र हूंगा तो फिर अपने भाइयों का मैं उपकार करूंगा तो कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। अब दित्ति ने अपने पति की, अब आदिति ने अपनी पति की बड़े प्रेम से श्रद्धा से सेवा की, और कश्यप जी ने देखा कि उनके हृदय में भगवान का आवेश हुआ, और कश्यप के हृदय से आदिति के हृदय में भगवान स्थापित हुए। और एकदम ब्रह्मा जी प्रकट होके कहते हैं कश्यप आदिति आपके घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, आराधना करने के लिए आए। और समय आने के ऊपर चार हाथों वाले सुंदर रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर पहने हुए, क्रीट मुकुट के साथ पुत्र का जन्म हुआ कश्यप और आदिति के घर में। सबके देखते देखते जैसे ड्रामे में कोई आदमी अभिनेता अपना रोल बदलता है, एकदम वो चार हाथों वाला विष्णु स्वरूप एक छोटे से बामने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अभी उसका संस्कार करने के लिए सूर्य देव ने उसको गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया। अब हर एक चीज कौन कौन कैसे दे रहा है, मां पृथ्वी ने चर्म दिया, मृग छाला दी बैठने के लिए और पहनने के लिए, कुबेर जो धन का दाता है उसने भीख मांगने का पात्र हाथ में दिया भिक्षा का, कमंडलू दे दिया ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने कुश दिया हाथ में उठाने के लिए, और वरुण जी ने दंड दिया, और गोलोक से छाता दिया गया, और पहली भिक्षा मां दुर्गा ने दी। ये सब देवताओं ने ये सारी सामग्री वामन देव के हाथ में दे दी। अब वामन देव जी द्वादश आदित्य 12 सूरज की प्रकाश जैसा वहां से रवाना हुए और पहुंच रहे हैं यज्ञशाला में, जहां बलि महाराज का भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं भृगु कच्छ में। ब्राह्मण वहां बैठे हुए देखते हैं कि सूर्य तो पहले से उग गया है, ये दूसरा कहां से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश को देख के सब आश्चर्यचकित हुए, देखा तो बहुत सुंदर बालक छाता हाथ में लिया हुआ, छोटा सा बामना हाथ में दंड भी लिया हुआ है, और भीख मांगने के लिए पात्र भी हाथ में है, मेखला पिताजी ने दी, कश्यप जी ने मेखला दी। तो अब सब भृगुवंशी ब्राह्मण गए उनका स्वागत करके लाके उनको आसन के ऊपर बिठाया, और बिठाने के बाद उसका चरण धोया। अरे गंगा जल से सब अपने घर का पवित्र करते हैं, वो गंगा जल पहले ब्रह्मा के कमंडल में गिरता है, फिर शंकर जी के जटा में गिरता है, उसके बाद नीचे गिरता है, लेकिन भाग देखो इस बलि महाराज का, जहां उसी वामन का पांव सीधा धोके गंगा जल उसको मिला है। किसी के सर के ऊपर गंगा जल नहीं गया, किसी के कमंडलों में नहीं गया, सीधा उसी वामन का चरण धोया है, और वो बलि को वो गंगा जल मिला है उस वामन के चरण का जो साक्षात वहां सामने खड़े हैं। अब बलि कहते हैं हमारा धन्य भाग है, आप जैसा इतना तेजस्वी ब्राह्मण हमारे यहां पधारा है, हमारे पूर्व पूर्वजों की बड़ी कृपा के कारण हम धन्य हो गए। महाराज आप मांग लो जो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, विवाह करना है तो ब्राह्मण पत्नी कोई लड़की चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, आज बलि उदारता से देने को तैयार है। जो आपको मांगना है मांग लो। बलि ने अपने प्रस्ताव रखा। मांगने से पहले भगवान बलि को पक्का करने के लिए उसके कहा कि बलि आपने आज तक किसी ब्राह्मण को लौटाया नहीं है, एक बार वचन दे दिया, आपने कभी किसी को इनकार तो किया कि नहीं है, प्रतिज्ञा का पालन करने में आप जैसा कोई रहा नहीं। और फिर बलि के वंश की प्रशंसा करते हैं, ये भगवान स्थापित करते हैं कि भगवान भी अगर मांगने जाएगा तो छोटा बनना पड़ेगा, मांगने वाला तो छोटा होएगा ही और मांगने वाले को दूसरे की प्रशंसा करनी पड़ती है, प्रशंसा के बगैर दूसरा प्रसन्न होकर दिल खोलेगा नहीं। अब कहते हैं छोटे वामन देव प्रहलाद के पुत्र हो, प्रहलाद के जिसके लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए थे, और आपके प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु, भगवान अभी तक वारादेव सोचता है कि कितना शक्तिशाली था हिरण्याकश्यप, मैंने उसको कैसे हराया, अभी तक उसको चिंता हो रही है। और हिरण्याकश्यप को जब पता लगा कि विष्णु ने मारा है मेरे भाई को, तो वो तो सीधा वैकुंठ चला गया, और भगवान विष्णु को उनके आने का सुन के अब भागने लगे, तो पीछे भागा हिरण्याकश्यप। अब विष्णु कहा चुपू कहा, चुपने के लिए विष्णु सांस के द्वारा आपके दादाजी हिरण्याकश्यप के हृदय में चले गए। अब वहां विष्णु उनको मिले नहीं, वैकुंठ को खाली देख के आपका दादा हिरण्याकश्यप वापस आ गए। विरोचन की क्या बात करें, आपके पिताजी की, और ब्राह्मण ने क्या मांगा था, अरे उन्होंने मांगा तुम्हारी आयु में दान में दे दो, अपनी आयु देने में उनको कोई आपत्ति नहीं रही, ऐसा आपका कुल है महाराज। अब तो प्रशंसा बहुत हो गई। वामन देव कहते हैं आप धन्य हो, मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, बस 3 कदम जमीन मेरे को दे दो। बलि हंसता है कि बातें तो बड़ी महान कर रहे हो बुजुर्गों जैसी, लेकिन बुद्धि बालक जैसी है। अरे बलि के दरवाजे के मांगने के बाद कहीं और मांगना पड़ेगा, ऐसा मांग लो कि कहीं और मांगना न पड़े, बलि के दरवाजे पे आए हो। अब वामन देव कहते हैं ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, पृथ्वी और गए जैसे राजाओं के पास इतनी संपत्ति थी फिर भी संतुष्टि नहीं हुई थी, तो मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप ये देने की तैयारी कीजिए, संकल्प कर लीजिए। अब संकल्प के लिए जल लेने के लिए तैयारी की बलि महाराज, शुक्राचार्य उठे गुरुजी, गुरुजी कहते बलि सावधान, ये वामन ब्राह्मण विष्णु आपके पूर्वजों का शत्रु आपसे छल से कुछ लेने आया है। मैं आपको ठीक बता दूं, अभी तक आपने ओम का उच्चारण नहीं किया है, जब तक ओम का उच्चारण नहीं होता है शास्त्र कहता है कही हुई बात से आदमी फिर जाए तो काम चलेगा। और फिर कहते हैं आपको तो राज शासन चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है, धन के 5 भाग किए जाते हैं, 1 अपने परिवार के पालन के लिए, 1 अपनी पब्लिसिटी के लिए, 1 धन के और कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 1 बंधी बंधु बांधुओं के लिए, 1 धर्म के कार्य के लिए, आपका सब चला जाएगा आप क्या करोगे। और फिर थोड़ी सी बात आपकी झूठ हो जाएगा ना, अरे झूठ भी तो बोला जा सकता है, विवाह में बोला जा सकता है मजाक करते हुए झूठ किसी की रक्षा की। विवाह के झूठ के ऊपर एक मेरे को बात याद आती है, बोलूं क्या? एक ब्राह्मण को किसी को कहा भेजा के लड़की के लिए वर ढूंढ के आओ। ब्राह्मण ने उनको जाके कहा लड़का कैसा है, उन्होंने पूछा, लड़का बोला ऐसा आज तक जमीन के ऊपर पांव नहीं रखा है। भाई बहुत धनी होगा, गाड़ियां मोटरें होंगी, जमीन के पांव क्या रखेगा, गलीचे बिछे होंगे, वो ऐसे बोल रहे। ब्राह्मण चुप। बोला और लड़के के गुण बताओ। बोला किसी की बात के ऊपर कान नहीं धरता। बड़ा इतना उधार है तो घर में झगड़ा नहीं होगा, सास की बात नहीं सुनेगा। अच्छा सबको एक आंख से देखता है तो इसका मतलब द्वेष नहीं करेगा। जब शादी के समय लड़के को लाए तो दो पांव नहीं थे, कान से बहरा था, आंख से काना था। पंडित जी ये क्या बोला आपने? कोई सत्य बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मैंने बोला धरती के ऊपर पांव नहीं रखता, किसी की कान उसकी पड़ती नहीं है, बात तो सुनेगा कहां से। तो विवाह में ऐसे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बात करी जाए तो चलती है। किसी की रक्षा में, किसी की रक्षा करनी हो तो भी ऐसे किया जा सकता है। और फिर दान से मुकरने में कौन सी बड़ी बात है। और प्राय यहां सिद्धांत बहुत बड़े उच्चे स्थापित किए। लोग दान करने के लिए संकल्प करते हैं मन में, देना है, लेकिन जब देने का टाइम आता है तब मन में थोड़ा सा फेर आ जाता है। इसलिए संकल्प पहले कराना चाह रहे हैं बलि, मन में सब पहले मन होता है। एक बार जहाज में एक आदमी जा रहा था और अभक्ष्य मछली खा ली, मछली का कांटा गले में अटक गया, गले में मछली का कांटा अटक गया। तो उस वक्त बड़ी, आप किसी के गले में कुछ अटक जाए उसकी हालत कैसी होगी, उसके मन में क्या आ रहा था। सबने अनाउंसमेंट या कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर जहाज में था। डॉक्टर ने कांटा निकाला, पूछा डॉक्टर साहब आपकी फी। बोला जिस वक्त आपके कांटा अंदर अटका था और आपने मन में संकल्प किया था उसकी आधा दे दो। अब बोलता है महाराज मैं लुट जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं लुट जाऊंगा, आधा दूंगा। तो बोला क्यों? बोला उस वक्त मैंने कहा जो कुछ है मेरा सारा ले लो, मेरा कांटा निकालो। जब संकट होता है तो हम कहते हैं जो है वो लो, नहीं चाहिए कुछ। जब देने का टाइम आता है तब कहते हैं अब क्या डॉक्टर साहब, अब क्या देने का, 500 रुपये में काम चले तो चला। तो इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से बलि महाराज को तैयार कर रहे हैं। शुक्र आचार्य की बात सुन के बलिराज महाराज थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर कहने लगे गुरु जी अगर ये विष्णु भी है तो मेरे दरवाजे के ऊपर मांगने को आया है ना, और ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है ना, वो वैसे है भी तो सब विष्णु का। अगर अपनी चीज वापस लेने आया है और मेरे हाथ दरवाजे के ऊपर हाथ टंगा है तो महिमा तो मेरी होगी ना, नाम तो मेरा होगा ना, और मैं इसको नहीं दूंगा तो मेरे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा। धरती कहती है कि मैं झूठे आदमी का भार नहीं उठा सकती, बाकी सबका भार उठा सकती हूं। मेरे को नरक में जाना पड़े मुझे डर नहीं है, मुझे को नाग फांस में बांध ले तो मैं बंधने को तैयार हूं, लेकिन मेरे अपने वचन से महाराज हट नहीं सकता। अब बलि महाराज ने जब ये कहा तो उसकी पत्नी विंध्यावली झारी भर के पानी लेकर आई। पत्नी ने समर्थन किया, पत्नी का धर्म था, समर्थन किया, झारी भर के ले आई और संकल्प के लिए पानी निकाल रहे हैं, पानी टूंटी से बाहर नहीं आ रहा। अरे वो क्या गया, टूंटी में क्या घुस गया? शुक्राचार्य बाबा टूंटी के अंदर जाके बैठ गए कि पानी नहीं गिरे। असल में क्या है, पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण जो होते हैं ना, उनके मन में ये इच्छा होती है कि यजमान सुखी रहे, धन धान इसके पास रहे तो कभी दान दक्षिणा देगा, कुछ भी नहीं रहेगा यजमान के पास कुछ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। ये तो सीधा सा ब्राह्मण के जो 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 ये करते करते हैं ब्राह्मण, उसकी ये इच्छा है। तो शुक्राचार्य उस दृष्टिकोण से अपने सिद्धांत के ऊपर अब तिनका उठा के ऐसे अंदर घुसाया और बलि और शुक्र बाबा की एक आंख फूट गई। भगवान ने कृपा करके शुक्राचार्य की एक आंख बाकी बचाई, सबको एक आंख से देखेगा अभी शुक्राचार्य। इसको शुक्र नीति कहते हैं। अब संकल्प बलि का हो गया, मांगने आए थे छोटे बामन और लेने के समय लंबे होने लगे, त्रिवणिकरम नाम हो गया। अभी तक वामन नाम था, वामन का मतलब छोटा बटू, और अब हो रहे हैं त्रिवणिकरम। त्रिवणिकरम का मतलब तीन, जिसके पांव के दो पांव में दो, ये सारी पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक का नाप पूरी हो गई। तीसरा नाम इनका है उपेंद्र, तीसरा नाम है वामन देव का उपेंद्र। ये इंद्र के भाई के रूप में आए हैं, उनके आगे आगे चलेंगे, आगे चल के जैसे उपनंद और नंद है ऐसे ये उपेंद्र है। अब सबने भगवान का विराट रूप देखा, पूरी सृष्टि भगवान के रूप में देखी, और पहले कदम से धरती मापी और दूसरा कदम सत्यलोक से ऊपर जब उठा तो व्रजा जहां नदी बहती है और जहां इस भौतिक जगत के ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, भगवान के अंगूठे का नाखून उसको छेदन किया और ऊपर से जल गिरा। ब्रह्मा जी भागते हुए वहां गए देवताओं को लेकर और भगवान के चरण का अभिषेक किया, चरण के ऊपर धोया चरण, वो जल जो नीचे गिरा ऊपर से वो आकाश में सीधा द्रुलोक के ऊपर गिरा। गंगा पहले द्रुलोक में गिरी, द्रुलोक से देवता लोग अपने विमानों के स्वर्ग के विमानों में स्वर्ग में गंगा को लेके आए। अब स्वर्ग में गंगा बह रही है, आज अभी इसी सत्र में हम उस गंगा को धरती के ऊपर लाएंगे, लेकिन आगे इसको देखिए। वामन देव अब छोटे हो गए, वापस अब छोटे हो गए, कहते हैं बड़ा दानी बन रहा था, सब कुछ देना चाह रहा था, झूठे कहेंगे कहां रखू तीसरा कदम, नाम अपना कहते मैं दान दिया है, अपने आप को बड़ा दानी समझ रहे थे, भगवान डांट रहे हैं। यह भी भगवान की परीक्षा है। भगवान संसार में बलि के वचन पालन की और बच्चे बलि के दिल खोल कर एक शब्द, आपके आजकल एक बलिदान हम कहते हैं शब्द, ये बलिदान बलि से शब्द निकला है। अरे बलि ने अपना दान कर दिया था, इसलिए दुनिया में कहते हैं बलिदान, मतलब अपना दान कर दो बलि। अब बलि कहता है महाराज मेरे लोक और परलोक, लोक मेरा मैंने राज यहां कमाया था अपने बाहुबल से, परलोक मैंने यज्ञ करके कमाया था, स्वर्ग आदि ये आपको दे दिए ना, इनको देने वाला मैं तो अभी बच गया ना, तो जो चीज आपने ली है उससे तो ज्यादा मैं देने वाला तो मैं बैठा हूं। ये तीसरा अपने अहंकार का बलिदान है। भगवान को अपना अहंकार त्याज रहा है अभी, और फिर कहता है ये मेरा सर है ना, इसके ऊपर आपका चरण रखो। अगर आप समझते हो कि ये मारा चरण छोटा पड़ेगा आपके पग के लिए, और इसी दिमाग से मैंने ये लोक और परलोक कमाया था, इसी दिमाग से इसी सर से मैंने ये लोक और परलोक कमाया था, रखो आपका सर महाराज, इस मेरे बाप का चरण मेरे सर के ऊपर धरो। अब जब ये कह रहा है तो विंध्यावली पत्नी कहती है ये शरीर भी आपका कहां है पति देव, ये भी तो भगवान का है। और इस वक्त प्रहलाद जी ऊपर से प्रकट हुए, प्रहलाद जी उतर के नीचे आए और गरुड़ जी ने वरुण पाश में बांध रख के रख दिया बलि महाराज को। अब बलि ने, अब प्रहलाद ने आके, प्रहलाद का सुंदर सांवला लंबा लंबा कद है, सांवला सा रंग है, वर्णन किया है भागवत में, प्रहलाद महाभागवत उतरा और भगवान को प्रार्थना की कि भगवान हम मूर्ख असुर आपकी संपत्ति को अपनी समझ के हमेशा गलती करते हैं, आपने अच्छा किया अपनी चीज वापस ले ली और मेरे इस पोते का उद्धार किया है आपने, बड़ा अच्छा किया। बलि ने, प्रहलाद ने अनुमोदन किया भगवान जो किया, और अपने पोते की इस वचन पालन के ऊपर प्रसन्न हुआ। पत्नी ने अनुमोदन किया और ब्रह्मा जी ने आके फिर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बलि और पत्नी विंध्यावली कहते हैं भगवान अब इसको मुक्त कर दो इस फांस से। अब भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। भगवान कहते हैं बलि तेरे लिए मैंने सूतल लोक विशेष रूप से विश्वकर्मा से बनाया है, जिसका सुख इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा है, वहां तुम निवास करो, आने वाले मनवंतर में तुमको इंद्र तो बनाऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास बिक चुका हूं, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, तू बलि वहां मेरा दर्शन करते रहना, मैं तेरी चौकीदारी करता रहूंगा, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर दरबान बनने जा रहा हूं, तुम जाओ सूतल लोक में। और उस वक्त प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं प्रहलाद सत्संग देने के लिए बलि के साथ आप भी सूतल में जाओ, आप जाओगे सत्संग दोगे बलि को, मैं भी वहां रहूंगा। अब यहां बलि महाराज सूतल लोक में विराजमान हुए। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो रही है, वैकुंठ में वापस नहीं आए, कब के गए थे पता लगा, बलि महाराज के दरवाजे के ऊपर दरबान बन के खड़े हैं। मां लक्ष्मी ब्राह्मणी बन के सूतल लोक में जाके कहती है, पहुंची तो काम, बलि महाराज कहते हैं आइए मां ब्राह्मणी आपका स्वागत है, कुछ मांगने आइए। बोला हाँ मांगने आए हूं। दोगे? बोला मेरा नाम बलि है, मैंने सर्वस्व पहले ही भगवान को दे दिया है, आज तक मैंने ना किसी को नहीं किया है, इस दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटा है। बोला संकल्प पहले भी एक बार कर चुका हूं, आप मांग लीजिए। बोला मांगू तो ये मेरा पति है जिसको आपने यहां रखा है, वापस दो ले जाऊं वैकुंठ में। ये वापस दो मुझे, वैकुंठ में ले जाऊं वहां। तो अभी बलि महाराज 6 महीने तक वहां रहते हैं और 6 महीने वापस चले जाते हैं। इस बलि महाराज के पास वामन देव रहते हैं। तो ये वामन देव के सर्वदान का चरित्र, वचन पालन का चरित्र, अपने वचन के लिए संकट जीवन में आ जाए और सद्धर्म का वचन किया हुआ हो और भगवान की सेवा के में कोई वचन किया हुआ हो तो कैसी भी बाधा आए, बंधन पड़े, परिस्थिति आए, गुरु मना करे, भगवान धोखा करने के लिए भी आ जाए तो भी अपने वचन से नहीं हिलना चाहिए। ये चरित्र बलि महाराज का यहाँ एक अध्याय बाकी बचता है 8वें स्कंद का। इस अध्याय में सद्धर्म पालन की स्थापना करने के लिए मत्स्य अवतार का वर्णन है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मत्स्य अवतार का वर्णन ऐसे है कि ब्रह्मा जी का पहला जो मन्वंतर था, पहले मनु का नाम आप सबको आना चाहिए, हर वक्त आना चाहिए, क्या नाम है? स्वयं, पहले मनु का स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के समय में ब्रह्मा जी को थोड़ी देर के लिए झपकी जैसे आए, ऐसे सांप के कारण थोड़ी देर के लिए प्रलय जैसा हो गया। प्रलय के समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकले और हयग्रीव असुर उसको ले जा रहा था, तब मत्स्य अवतार होके भगवान ने उस वेदों का संरक्षण किया। अब दोबारा इस मनवंतर में जो इससे पहले गया है, इससे पहले जो मनवंतर गया, अचानक दिन को दोपहर में ब्रह्मा बाबा को थोड़ा सा जमाई आया और आंख लगी, झपकी आ गई। झपकी आ गई तो फिर थोड़ी छोटी सी प्रलय होने लगी, छोटी सी प्रलय होने लगी। ये जो छोटी सी प्रलय जो होने लगी, उस वक्त जिस चीज की आवश्यकता थी उसके लिए ये तैयारी की गई। वो तैयारी कैसे की गई कि एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा सत्यव्रत के नाम से हुआ। सत्यव्रत महाराज नहाने के लिए नदी के ऊपर गए, नदी से स्नान करने के जैसे बाद अंजलि से जल नदी में दे रहे तो हाथ में एक छोटी मछली आ गई। मछली छोटी हाथ में आई तो वापस फेंक दी। तो मछली ने कहा, महाराज मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरे को कहां फेंक रहे हैं? महाराज उसको लेके आ गए घर में। घर में आके एक बर्तन में रख दिया। अभी महाराज वापस लौट के देखें, बोलती है मैं छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन चाहिए। अभी तो बहुत बड़ा परात में रख दिया और 2 मिनट के बोलती है परात छोटा पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी टांकी में डाल दी, टांकी छोटी पड़ रही है, तालाब में डाल दी, तालाब छोटा पड़ रहा है, नदी में डाल दी, सेतु बन गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समुद्र में ले जाके फेंकी। तब तो सत्यव्रत कहता है, आप साधारण मछली नहीं है, बताइए कौन है, बताइए कौन है आप। तब मत्स्य अवतार में भगवान कहते, सत्यव्रत अभी छोटी प्रलय होने वाली है, ब्रह्मा जी की जमाई के समय प्रलय होगी, तब चारों ओर से बाढ़ आके पानी इकट्ठा होगा, उस वक्त तुम्हारे सामने एक नाव आएगी, तुम नाव के ऊपर चढ़ना, अंधकार होगा, सब वनस्पतियों के बीज ले लेना, सब प्राणियों के बीज अपने हाथ में लेना, वेदों को साथ लेना, और सप्तऋषि केवल होंगे ना, उनका प्रकाश ही प्रकाश होगा, उसके अंदर से जो प्रकाश निकलेगा उतनी रोशनी होगी, बाकी अंधकार होगा। तुम नाव के ऊपर सवार होना और मैं बहुत बड़े मच्छ के रूप में तुम्हारे को दिखाई दूंगा और सर के ऊपर मेरे खूंटा लगा हुआ होगा और वासुकी से तुम उस नाव को मेरे अंदर बांध देना, प्रलय पे पूरे होने के बाद मैं आपको सुरक्षित बाहर ले आऊंगा। ये कथा कहने के बाद पहले जैसे आपको कहा मनु की छोटी प्रलय हुई, चारों ओर से पानी बढ़ने लगा, सत्यव्रत के पास नाव आई, सब बीज औषधियां लेकर उसके अंदर सवार हुए, सप्तऋषि बैठे और कहा कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो भगवान को, भगवान को प्रकट होना चाहिए, तब दूर से देखा बहुत सुंदर बहुत बड़ा मत्स्य अवतार और सर के ऊपर खूंटा लगा हुआ है बहुत निकट में आया। वासुकी से अपनी नाव को उसमें बांध लिया। अब भगवान मत्स्य अवतार में प्रार्थना उसकी की गई ऋषियों के द्वारा और सत्यव्रत के द्वारा। तब सत्यव्रत को कहने लगा भगवान मत्स्य शिक्षा देते हुए, भक्ति योग सांख्य योग की शिक्षा देते हुए कहने लगे, सत्यव्रत अब आने वाले मनु में आप विवस्वत मनु के नाम से जाने वाले हो, इसलिए मैं आपको अभी शिक्षा दे के तैयार कर देता हूं ताकि आपको संचालन संसार का चलाना है। यहां मनु यहां सत्यव्रत को ये उपदेश दे के मत्स्य अवतार में और यहां अष्टम स्तंग स्कंद पूरा होता है। अब आइए नवें स्कंद में प्रवेश करें, उससे पहले आप थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक कर लें और कुछ एक भजन सुन लें और फिर दशम स्कंद को शुरू कर दें। ओ नवम स्कंद को दशम कल आज शाम को दशम को शुरू करके कल सुबह वो कल सुबह आज शाम को राम अवतार शाम को राम जी आएंगे।
भगवान की जय। जय बोलो जोर से, कुश्ती आ रही क्या? जय बोलो प्रभु भगवान की जय।